ओम शांति।
आज की होली है 6 जून 1990 का प्रातः क्लास।
टुडेज मुरली इज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 6 जून 1990।
ओम शांति।
ओम शांति।
तुम कहाँ बैठे हो?
वेयर आर यू सिटिंग?
इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो।
यू कैन कॉल इट अ स्कूल और अ यूनिवर्सिटी।
विश्वविद्यालय है ना?
इट इज द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, इजंट इट?
ये वंडरफुल विश्वविद्यालय है, घर का घर भी है और विश्वविद्यालय भी है।
इट इज अ वंडरफुल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। इट इज अ हाउस एज वेल एज द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी।
और सारी दुनिया में ये एक ही विश्वविद्यालय है।
एंड इन द एंटायर वर्ल्ड दिस इज द ओनली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी
जिसकी ये सब ईश्वरीय ब्रांचेज हैं।
इट हैज ऑल दीज गॉडली ब्रांचेस।
क्या?
व्हाट?
बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है।
द फादर हैज ओपन्ड द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी।
शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है।
इन द स्क्रिप्चर्स दे हैव रिटन द नेम रुद्र यज्ञ।
किसका नाम?
हूज नेम?
क्यों?
Someone said something. Why?
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहाँ उड़ गया?
Where was the name ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय lost?
रुद्र यज्ञ शास्त्रों में प्रसिद्ध है।
The रुद्र यज्ञ is famous in the scriptures.
शास्त्रों में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय प्रसिद्ध नहीं है।
The ब्रह्मा कुमारी विद्यालय is not famous in the scriptures.
शास्त्रों में गीता मंदिर प्रसिद्ध है।
द गीता मंदिर दैट इज द गीता टेम्पल्स आर फेमस इन द स्क्रिप्चर्स।
मंदिर मनगर
टेम्पल मीन्स होम।
तो गीता मंदिर किस बात की यादगार है?
सो द टेम्पल ऑफ द गीता इज अ मेमोरियल ऑफ व्हाट?
वर्तमान की जो ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है उसकी ये ब्रांचेज है गीता पाठशाला।
गीता पाठशाला द स्कूल्स ऑफ द गीता आर द ब्रांचेस ऑफ द करंट गॉडली यूनिवर्सिटी।
उन गीता पाठशालाओं की यादगार है गीता मंदिर जो शहर शहर में बने हुए
हैं। द गीता टेम्पल्स आर द मेमोरियल ऑफ दो स्कूल्स ऑफ द गीता एस्टेब्लिश्ड इन एवरी सिटी।
भक्ति मार्ग में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बने हुए हैं।
The Brahma Kumari Vidyalaya is not established on the path of worship.
शास्त्रों में भी जो रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है।
The name रुद्र यज्ञ that is written in the scriptures.
वो रुद्र शिव का नाम नहीं है।
That रुद्र is not the name of शिव।
शिव का नाम तो एक ही शिव है।
The name of शिव is only one, शिव।
मेरी बिंदी का नाम शिव है।
The name of my point is Shiv.
जब शरीर बदलते हैं
When the bodies change,
तो नाम भी बदल जाते हैं।
The names also change.
तो रुद्र का अर्थ है रौद्र रूप धारण करने वाला।
So the meaning of Rudra is the one who assumes a ferocious form.
विकराल रूप धारण करने वाला।
The one who assumes a fearsome form.
सहज तरीके से प्यार के तरीके से कोई नहीं मानता है सच्ची बातों को ठुकराते हैं तो फिर विकराल रूप धारण करते हैं।
He assumes a fearsome form if someone doesn't accept easily through love, if someone rejects the truth.
जिस तन के द्वारा ये कार्य करते हैं उसका नाम रखते हैं रुद्र।
द बॉडी थ्रू विच ही परफॉर्म्स दिस टास्क इज नेम्ड रुद्र।
सारी दुनिया का विनाश कराई देते।
ही ब्रिंग्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल वर्ल्ड।
कथा आई है।
देयर इज अ स्टोरी।
इस समय तुम जानते हो शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है।
यू नो दैट एट दिस टाइम बाबा हैज ओपेंड दिस स्कूल ऑफ द गीता और यूनिवर्सिटी।
और इसमें पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचे बापे हैं।
एंड द वन हु टीचेस हियर इज द हाईएस्ट ऑन हाई फादर।
ऊंचे से ऊंचे का क्या मतलब?
व्हाट इज मेंट बाय द हाईएस्ट ऑन हाई?
ऊंचे से ऊंचे माने कोई से ऊंचे।
द हाईएस्ट ऑन हाई मीन्स हायर देन समवन।
कौन कौन से ऊंचे?
हायर देन हुम?
वो कोई पिताएं थोड़े ही है।
Someone said something. Those ones are not fathers.
विष्णु को पिता थोड़े ही कहा जाता है।
विष्णु is not called father.
जो भी दुनिया के धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक।
All the religious fathers of the world, Abraham, Buddh, Christ, Guru Nanak.
वो great fathers कहे जाते हैं।
Are called great fathers.
लेकिन वो ऊंचे से ऊंचे नहीं है।
But they are not the highest on high.
ऊंचे हैं, लेकिन ऊंचे से ऊंचे नहीं हैं।
They are high, but not the highest.
गुरु नानक ने भी अपने से ऊंचे की तरफ इशारा किया। एक ओंकार निरंकार।
Even Guru Nanak indicated towards the one higher than him. एक ओंकार निरंकार।
तो धर्म पिताएं ऊंचे नहीं, ऊंचे से ऊंचे नहीं है, लेकिन उनसे भी ऊंचे है गॉड फादर।
द रिलीजियस फादर्स आर नॉट द हाईएस्ट ऑन हाई, गॉड द फादर इज हायर देन देम।
क्राइस्ट को, बुद्ध को या शंकराचार्य को ऊंचे से ऊंचे गॉड फादर नहीं कहेंगे।
वी कैन नॉट से द हाईएस्ट ऑन हाई गॉड द फादर फॉर क्राइस्ट, बुद्ध और शंकराचार्य।
ये तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हमको ऊंचे से ऊंचे पढ़ाते हैं।
इट शुड बी इन द चिल्ड्रंस इंटेलेक्ट दैट द हाईएस्ट वन टीचेस अस।
ऊंचे से ऊंचा टीचर पढ़ावेगा।
इफ द हाईएस्ट ऑन हाई टीचर टीचेस
तो पदवी ऊंचे से ऊंचा दिलावेगा।
देन ही विल इनेबल टू अचीव द हाईएस्ट ऑन हाई पोजीशंस।
वकील पढ़ावेगा तो वकील बनावेगा, बैरिस्टर बनावेगा।
इफ अ लॉयर टीचर्स ही विल क्रिएट अ लॉयर, ही विल क्रिएट अ बैरिस्टर।
जज बनावेगा।
एंड ही विल क्रिएट अ जज।
लेकिन हमको तो वो पढ़ाते हैं।
बट वी आर टॉट बाय द वन
जिससे ऊंचा जज कोई होता ही नहीं।
हु डजंट हैव अ जज हायर देन हिम।
उनको कहते हैं सुप्रीम जज।
ही इज कॉल्ड द सुप्रीम जज।
धर्मराज कहा जाता है।
ही इज कॉल्ड धर्मराज।
ऊंचे ऊंचे भगवान हमको पढ़ाते हैं।
दैट हाईएस्ट ऑन हाई गॉड टीचेस अस।
और उनका यह यज्ञ रचा हुआ है।
एंड ही हिमसेल्फ हैज क्रिएटेड दिस यज्ञ दैट इज सैक्रिफिशियल फायर।
कौन सा यज्ञ?
विच यज्ञ?
यज्ञ माना क्या?
व्हाट इज यज्ञ मीन?
यज्ञ किसे कहा जाता है?
व्हाट इज कॉल्ड यज्ञ?
ईंटों की मेहलमानियां, अटारियां इकट्ठी कर ली जाए, सुखधाम शांति धाम बनाए दिया जाए, उसे यज्ञ कहा जाता है क्या?
इज इट कॉल्ड अ यज्ञ इफ समवन एक्युमुलेट्स बिल्डिंग्स एंड मैंशंस ऑफ ब्रिक्स, इफ समवन बिल्ड्स सुखधाम दैट इज द एबोड ऑफ हैप्पीनेस एंड शांति धाम दैट इज द एबोड ऑफ पीस।
भक्ति मार्ग में
ऑन द पाथ ऑफ वर्शिप
ये सारी सामग्री अग्नि में स्वाहा कर देती है।
दे सैक्रिफाइस लॉट्स ऑफ मटेरियल्स इन द सैक्रिफिशियल फायर।
यज्ञ कुंड को समझते हैं कि ये यज्ञ है.
They think that यज्ञ कुंड, that is the sacrificial pit, is the यज्ञ.
लेकिन यज्ञ तो है ही ज्ञान यज्ञ.
But the यज्ञ is the ज्ञान यज्ञ, that is the sacrificial fire of knowledge.
ज्ञान को ही यज्ञ कहा जाता है.
Knowledge itself is called यज्ञ.
वो हवन कुंड जो बनाए गए,
those fire pits that were built,
और हजारों साल से वो यज्ञ कुंड होते चले आए,
and sacrificial pits that have been made for thousands of years,
उनमें कोई सारी दुनिया स्वाहा नहीं हुई,
the whole world was not sacrificed in them.
ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड है जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी.
This is the pit of the sacrificial fire of knowledge in which the whole world will be sacrificed.
कचरा सब खलास हो जाएगा.
All the garbage will be destroyed.
जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी वो ही बचेंगे.
Only those who are the best souls will survive.
तो इस यज्ञ का नाम बाला है.
So the name of this sacrificial fire is famous.
इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ.
It is called राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ.
स्व के राज्य का यज्ञ है.
It is the यज्ञ of the self sovereignty.
स्व माने आत्मा.
स्व means soul.
दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने की बात नहीं है.
It is not about controlling the others.
अपनी आत्मा के मन और बुद्धि और संस्कारों को कंट्रोल करने की बात है.
It is about controlling the mind, intellect and संस्कार्स of our soul.
पांच इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात है.
It is about controlling the five organs.
इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है.
It is said we become victorious over the world by gaining victory over the organs.
इंद्रियों को जीत लिया उसको कहेंगे जगत जीत.
If someone gains victory over the organs, he will be called the one who is victorious over the world.
तो ये अश्वमेध यज्ञ है.
So this is अश्वमेध यज्ञ.
अश्व माने घोड़ा.
अश्व means horse.
जैसे घोड़े को लगाम लगाई जाती है तो कंट्रोल में रहता है.
For example, if we put a bridle on the horse, it remains under control.
ऐसे ही ये मन रूपी घोड़ा जो आत्मा का कार्य करता है.
In the same way, in the case of this horse-like mind that does the work of the soul,
उसको बुद्धि की लगाम लगाएंगे.
If we put the bridle like intellect on it,
तो कंट्रोल में रहेगा.
It will remain under control.
अगर लगाम ढीली छोड़ दी,
if we let loose the reins,
तो गड्ढे में ले जाता है.
It, that is horse-like mind, takes us into the ditch.
रुद्र ज्ञान यज्ञ में,
in this रुद्र ज्ञान यज्ञ,
सारी दुनिया स्वाहा कर रहे हैं.
We are sacrificing the whole world.
इन आँखों से जो कुछ भी देखने में आता है सब स्वाहा होने वाला है.
Everything that we see through these eyes is going to be sacrificed.
और मन बुद्धि की आँखों से जो देखते हैं ज्ञान की दृष्टि से, जो नई दुनिया दिखाई पड़ती है वो रहने वाला है.
एंड एवरीथिंग दैट वी सी थ्रू द आईज इन द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट, द न्यू वर्ल्ड दैट इज विजिबल थ्रू दृष्टि, दैट इज द आई ऑफ नॉलेज, इज गोइंग टू रिमेन.
आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती.
द सोल कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड.
आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है.
द सोल इज इमॉर्टल, eternal and imperishable.
बाकी पांच तत्वों की बनी हुई सारी चीजें स्वाहा हो जाएंगी.
And everything else, all the things created out of five elements will be sacrificed.
पांच तत्वों के बने हुए ये मनुष्य शरीर जो भी 500-700 करोड़ है सब खलास हो जाएगी।
ऑल दीज 5-7 बिलियन ह्यूमन बॉडीज मेड आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स विल बी डिस्ट्रॉयड।
बाकी आत्माएं वापस भागेंगी।
एंड फॉर द रेस्ट ऑल द सोल्स विल रन बैक।
कहाँ भागेंगी?
वेयर विल दे रन?
जहाँ से आत्माएं आई है वहीं वापस भागेंगी।
द सोल्स विल रन टू द प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैव कम।
उसको कहते हैं आत्मलोक।
इट इज कॉल्ड द एबोड ऑफ सोल्स आत्मलोक।
सुप्रीम एबोड, सोल वर्ल्ड।
द सुप्रीम एबोड, द सोल वर्ल्ड।
जहाँ से आत्मा इस सृष्टि पर उतरती है।
द प्लेस फ्रॉम वेयर द सोल्स कम डाउन टू दिस वर्ल्ड।
इसलिए दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जाती है।
दैट इज वाई द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कीप्स इंक्रीजिंग।
मनुष्यों की आत्माएं नहीं,
नॉट जस्ट द सोल्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स।
पशु, पक्षी, पतंगे, कीट, कीटाणु,
द एनिमल्स, बर्ड्स, मॉथ्स, फ्लाइज, इंसेक्ट्स एंड जर्म्स,
सब की आत्माएं उतर रही है युगानुसार।
द सोल्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर डिसेंडिंग अकॉर्डिंग टू द युग, दैट इज एरा और एज। हियर अ पीरियड ऑफ 1250
इयर्स। युग में श्रेष्ठ आत्माएं उतरती है।
The elevated souls come down during the elevated yuga.
और कलयुग है कनिष्ठ युग।
And the iron age is the inferior yuga.
उसमें कनिष्ठ आत्माएं नीचे उतरती।
The inferior souls descend in it.
दुखदायी आत्माएं नीचे उतरती।
The sorrowful souls descend.
अब वो चाहे कनिष्ठ आत्माएं हो।
Now whether they are inferior souls,
चाहे श्रेष्ठ देव आत्माएं हो,
और they are elevated deity souls,
इस कलयुग के अंत में तो सब संग के रंग में आने से भ्रष्ट हो जाती।
All become corrupted at the end of the iron age as the result of coming into the color of the company.
भ्रष्ट बुद्धि आत्माएं,
the souls with corrupted intellects,
परमात्मा बाप की याद से जिनको स्वच्छ बनना होता है बनती है, उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती
है। दैट हैव टू बिकम प्योर एंड दैट बिकम प्योर थ्रू द रिमेम्बरेंस ऑफ द सुप्रीम सोल फादर, देयर नंबर इज वेरी स्मॉल।
और जो ढेर की ढेर बचती है उनको सबको वापस जाना है।
एंड दोज न्यूमरस वंस हु रिमेन, All of them have to go back.
ये संगम युग है।
This is the confluence age.
कलयुग का अंत और सतयुग का आदि।
The end of the iron age and the beginning of the golden age.
सतयुग का आदि होने वाला है।
Now the golden age is going to begin.
कलयुग का अंत होने वाला है।
The iron age is going to end.
दोनों के बीच में ये 100 वर्ष का संगम युग है।
दिस इज द कॉन्फ्लुएंस एज ऑफ 100 इयर्स इन बिटवीन बोथ ऑफ देम।
जो भी धर्म पिता आए अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए सब ने 100 वर्ष के अंदर ही अपने धर्म की स्थापना की।
ऑल द रिलीजियस फादर्स हु केम टू एस्टैब्लिश देयर रिलीजन एस्टैब्लिश देम विद इन 100 इयर्स।
उन धर्म पिताओं को ऊंचे ऊंचे नहीं कहेंगे।
Those religious fathers will not be called the highest on high.
लेकिन ये तो ऊंचे ऊंचे बाप आया हुआ है।
But here the highest on high father has come.
Great great grandfather आया हुआ है।
The great great grandfather has come.
सारी दुनिया का पिता, universe का बाप।
The father of the entire world. The father of the universe.
दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है।
He is the one who distinguishes the good from the bad.
है तो ये सब ड्रामा।
ऑल दिस इज द ड्रामा।
बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार इस धरती पर आते हैं।
द फादर ऑल्सो कम्स टू दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ड्रामा प्लान।
इन्हें बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कहा जाता है।
ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द पॉइंट लाइक सोल्स।
तुम ड्रामा के वशीभूत होकर के चलते हो।
यू प्ले द पार्ट फोर्स्ड बाय द ड्रामा।
और मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ।
एंड आई एम ऑल्सो बाउंड इन द बॉन्डेज ऑफ द ड्रामा।
बाप कहते हैं।
द फादर सेज
हमने राजस्व यज्ञ रचा है।
वी हैव क्रिएटेड द राजस्व यज्ञ।
स्वकीय राजाई प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ रचा है।
वी हैव क्रिएटेड दिस यज्ञ इन ऑर्डर टू अबटेन सेल्फ सॉवरेनिटी।
कौन से बाप कहते हैं?
विच फादर सेज सो।
वेद के दो बाप हैं।
देर आर टू अनलिमिटेड फादर्स।
एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप।
वन इज द फादर ऑफ द पॉइंट लाइक सोल्स।
और एक है मनुष्य शक्ति का बाप।
एंड द अदर इज द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड।
बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु।
शिव पॉइंट ऑफ लाइट द फादर ऑफ द पॉइंट लाइक सोल्स।
मनुष्य शक्ति के पिता में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से।
एंटर्स इनटू द फादर ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन इन अ परमानेंट वे।
वो मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं।
दैट फादर ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन सेज
हमने ये राजस्व यज्ञ रचा है।
वी हैव क्रिएटेड दिस राजस्व यज्ञ
स्वकीय राजाई प्राप्त करने के लिए।
इन ऑर्डर टू अबटेन सेल्फ सॉवरेनिटी।
विश्व का बाप है तो विश्व का पिता होना चाहिए ना।
इफ ही इज द फादर ऑफ द वर्ल्ड देन ही शुड बी द वर्ल्ड फादर। विश्व पिता शुडंट ही।
वही विश्व महाराजन कहा जाता है।
ही हिमसेल्फ इज कॉल्ड द वर्ल्ड एम्परर।
सारे विश्व को उसका शासन अंततः स्वीकार करना पड़ता है।
फाइनली द एंटायर वर्ल्ड हैज टू एक्सेप्ट हिज रूलिंग।
तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है।
सो दिस रुद्र ज्ञान यज्ञ हैज बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द ड्रामा प्लान एज वेल।
ऐसे नहीं कहेंगे।
इट विल नॉट बी सेड
कि मैंने यज्ञ रचा है।
आई हैव क्रिएटेड द यज्ञ
माना शिव ने यज्ञ रचा है।
मीनिंग शिव हैज क्रिएटेड द यज्ञ।
रचने वाला साकार होना चाहिए।
The creator should be corporeal.
रचयिता भी साकार और रचना भी साकार।
The creator as well as the creation should be corporeal.
ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए।
According to the drama, in order to teach you children.
कलप पहले माफी ज्ञान यज्ञ रचा गया है।
The ज्ञान यज्ञ that is sacrificial fire of knowledge has been created like in the previous साइकिल।
मैंने रचा है ये भी अर्थ नहीं निकलता।
इट डजंट मीन दैट आई हैव क्रिएटेड इट ईदर।
ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है।
इट हैज बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द ड्रामा प्लान।
और कल्प कल्प रचा जाता है।
एंड इट इज क्रिएटेड एवरी साइकिल।
तो ये ड्रामा बना बनाया है।
दिस ड्रामा इज प्री ऑर्डेन्ड।
कब बना ये नहीं कहा जा सकता।
इट कैन नॉट बी सेड व्हेन इट वाज क्रिएटेड।
अनादि ड्रामा है।
इट इज द एटर्नल ड्रामा।
ये सृष्टि भी अनादि है।
दिस वर्ल्ड इज एटर्नल टू।
आत्माएं भी अनादि हैं।
द सोल्स आर आल्सो एटर्नल।
और आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा शिव भी अनादि।
एंड द फादर ऑफ द सोल्स The Supreme Father, Supreme Soul Shiv is eternal as well.
एक ही बार ये यज्ञ रचा जाता है।
This yagya is created only once.
एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार।
Only once in a cycle, God Shiv incarnates.
शास्त्रों में तो ढेर सारी कथा कहानियाँ लिखी हुई हैं।
There are many stories written in the scriptures.
कि भगवान हर युग में आता है, 24 अवतार लेता है।
That God comes in every era. He has 24 incarnations.
लेकिन हर युग में आने की दरकार नहीं है।
But he doesn't need to come every yuga.
मकान का मालिक बाप तब ही मकान बनाता है जब मकान पुराना हो जाता है।
The owner of the house, the father, builds the house only when it becomes old.
ये भी सच्ची रूपी मकान है।
This is also a house-like world.
इसका जो मालिक है जब मकान पूरा हो जाता है, तामसी हो जाता है।
When the house becomes old, when it becomes tamasi, that is degraded,
सब बच्चे दुखी हो जाते हैं।
And when all the children become sorrowful,
तब मैं आता हूँ नया मकान बनाने के लिए।
I come to build a new house.
तो पुराना मकान गिराना भी जरूरी है।
So it is also necessary to destroy the old building.
ये सच्ची रूपी मकान है।
This is a house-like world.
अभी बुद्धि में बैठा है।
Now it has sat in the intellect.
बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था।
But exactly 5000 years before too, it was the golden age.
अभी फिर ये चक्कर रिपीट हो रहा है।
Now this cycle is repeating once again.
फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है।
The new world is being established once again.
तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो।
You are studying to obtain self-sovereignty, स्वराज्य in the new world.
गांधी जी ने भी प्रयत्न किया स्वराज्य के लिए।
गांधी जी also tried for self-sovereignty.
लेकिन अर्थ नहीं समझा कि स्व माने क्या।
But he did not understand the meaning of Sva.
Sva manam Atma.
Sva means soul.
Rajya mane Rajya.
Rajya means sovereignty.
Atma ka Rajya tabhi kaha ja sakta hai jab Atma Raja ban karke karmendriyon par control kare.
Only when the soul becomes a sovereign and rules over the organs, it can be called the sovereignty of the soul.
Karmendriya, agar atma ko nachati hai, karmendriya agar vashibhut ho jati hai, to swaraji nahi chal sakta.
Self-sovereignty cannot take place if the organs makes the soul dance to their tune, if the organs become subject to Maya.
ये स्वराज्य नई दुनिया में होता है।
This self-sovereignty is in the new world.
पुरानी दुनिया में स्वराज्य नहीं होता।
Self-sovereignty doesn't exist in the old world.
क्या होता है?
What exists there?
पराराज्य होता है।
There is the sovereignty of the others. पराराज्य।
स्व नहीं, पर।
Not of the self. स्व of the others. पर।
पर है रावण।
रावण is the other one. पर।
और स्व है बाप।
And the father is our own. स्व।
स्व है आत्मा।
The soul is our own, Swa.
जब रावण राज्य हो जाता है, तो सारी दुनिया में पांच पंचों का राज्य हो जाता है।
When it becomes the kingdom of Ravan, the rule of the five panch, that is, the members of the panchayat. Panchayat means a village council or arbitrating body run by five or more members takes place in the whole world.
दस सिरों का राज्य हो जाता है।
इट बिकम्स द किंगडम ऑफ द टेन हेड्स।
अनेक मतों का राज्य हो जाता है।
इट बिकम्स द किंगडम ऑफ मेनी ओपिनियंस।
क्योंकि सर के अंदर ही मति अर्थात बुद्धि रहती है।
इट इज बिकॉज देयर इज द मति मीनिंग द इंटेलेक्ट बुद्धि इनसाइड द हेड।
परंतु ये स्वराज्य प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन है।
बट देयर इज वन कंडीशन टू अटेन दिस सेल्फ सॉवरेनिटी ऑफ द न्यू वर्ल्ड।
पवित्र जरूर रहना पड़े।
यू सर्टेनली हैव टू रिमेन प्योर।
पवित्र रहेंगे तो स्वराज्य प्राप्त होगा।
इफ यू रिमेन प्योर यू विल अटेन सेल्फ सॉवरेनिटी।
आप पवित्र बनते रहेंगे तो बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान ही नहीं बैठेगा।
इफ यू कीप ऑन बिकमिंग इम्प्योर द स्पिरिचुअल नॉलेज विल नॉट सिट इन द इंटेलेक्ट एट ऑल।
शास्त्रों का ज्ञान बैठ सकता है जो मनुष्यों का लिखा हुआ है।
द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स रिटन बाई ह्यूमन बींग्स कैन सिट इन द इंटेलेक्ट।
लेकिन एवर प्योर जो परमात्मा बाप है उसका ज्ञान पवित्र बुद्ध रूपी गढ़े में ही बैठेगा।
बट द नॉलेज ऑफ द एवर प्योर सुप्रीम सोल फादर विल सिट ओनली इन अ प्योर वेसल लाइक इंटेलेक्ट।
जिसका मिसाल दिया जाता है।
एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर दिस।
कि शेरनी का दूध मिट्टी के पात्र में नहीं रहता।
द मिल्क ऑफ द लायनेस डजंट रिमेन इन अ पॉट ऑफ मड।
मिट्टी का घड़ा होगा। शेरनी का दूध घड़े को तोड़ के निकल जाएगा।
इफ इट इज अ पॉट मेड आउट ऑफ मड देन द मिल्क ऑफ द लायनेस विल ब्रेक द पॉट एंड रन आउट।
ऐसे ही ज्ञान सूर्य बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं।
सिमिलरली व्हेन द फादर द सन ऑफ नॉलेज कम्स इनटू दिस वर्ल्ड
तो दोनों रूपों में पार्ट बजाते।
ही प्लेस द पार्ट इन बोथ द फॉर्म्स।
माँ के रूप में भी पार्ट बजाते हैं पहले पहले ब्रह्मा।
ही ऑल्सो प्लेस द पार्ट इन द फॉर्म ऑफ द मदर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मा।
ब्रह्मा ने बड़ी मामा ने माँ।
ब्रह्म मीन्स सीनियर एंड माँ मीन्स मदर।
और बाद में बाप के रूप में भी पार्ट बजाते।
लेटर ऑन ही ऑल्सो प्लेस द पार्ट इन द फॉर्म ऑफ द फादर।
माँ के रूप में जो पार्ट बजाते हैं वो सिंघनी का रूप है।
द पार्ट विच ही प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द मदर इज द रोल ऑफ अ लायनेस।
शास्त्रों में उसे रणचंडी के रूप में दिखाया गया।
इन द स्क्रिप्चर्स शी हैज बीन शोन इन द फॉर्म ऑफ रणचंडी।
जगदम्बा के रूप में दिखाया गया।
शी हैज बीन शोन इन द फॉर्म ऑफ जगदम्बा।
शेरनी शक्ति के रूप में दिखाया गया।
शी हैज बीन शोन इन द फॉर्म ऑफ अ लायनेस शक्ति।
जो बोला अव्यक्त वाणी में।
लाइक इट वॉज सेड इन द अव्यक्त वाणी
भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है।
भारत माता द इनकार्नेशन ऑफ शिव शक्ति इट इज द स्लोगन ऑफ द एंड।
ब्रह्मा सो वैष्णवी शक्ति।
ब्रह्मा बिकम्स वैष्णवी शक्ति।
ये वैष्णवी शक्ति अंत में प्रत्यक्ष होती है।
दिस वैष्णवी शक्ति इज रिवील्ड इन द एंड।
आदि में ब्रह्मा के रूप में।
ही इज रिवील्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा एट द बिगिनिंग।
आत्मा वही है।
इट इज द सेम सोल।
दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा पुरुष तनधारी उसकी पूजा नहीं होती है।
ब्रह्मा विथ अ बियर्ड एंड मुस्टैच हैविंग अ मेल बॉडी इज नॉट वर्शिप्ड।
लेकिन सृष्टि की रचना होती है ब्राह्मणों की रचना होती है प्यार से पालना होती है।
बट थ्रू हिम the creation of the world takes place. The creation of the Brahmins takes place. The sustenance takes place with love.
जैसे सिंघनी भी अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़े प्यार से पालती है माँ के रूप में.
Like even a lioness sustains its small cubs very lovingly in the form of the mother.
इसलिए भारत की परंपरा में
That is why in the Indian tradition
बाप को भी शेर के रूप में दिखाते हैं और माँ को भी शेर के रूप में दिखाते हैं. तीन शेर दिखाए गए.
The father is shown in the form of the lion and the mother is shown in the form of a lion. Three lions have been shown.
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर. उनमें एक शेरनी भी है.
ब्रह्मा, विष्णु एंड शंकर. There is also a lioness among them.
तो शेरनी का ये ज्ञान दूध.
So this milk of knowledge of the lioness.
उसी बुद्ध रूपी घड़े में टिकेगा जो पवित्र रहने का पुरुषार्थ करेगा.
Will remain only in the vessel-like intellect of the one who makes effort for being pure.
वो ही बच्चे ये पढ़ाई पढ़ेंगे.
Only those children will study this teaching
जिन्होंने कल पहले ये पढ़ाई पढ़ी.
Who had studied it a cycle before.
और वो ही बच्चे मनुष्य से देवता बनेंगे जो लोग कल पहले बने थे.
And only those children will become deities from human beings who had become such a cycle before.
पहले भी बने थे अभी भी बनेंगे.
They had become this before and they will become this now too.
साक्षी होकर के ड्रामा को देखना होता है.
You have to watch the drama as a detached observer.
और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है.
And then You have to make efforts too.
बच्चों को मार्ग भी बताना है.
The children have to show the path too.
मार्ग जो बताया जाता है वो पवित्रता का मार्ग है.
The path that is shown is the path of purity.
मुख्य बात पवित्रता की है.
The main thing is purity.
मुख्य पुरुषार्थ पवित्रता का है.
The main effort is that of purity.
बोलते हैं याद का सब्जेक्ट मुख्य नहीं है क्या.
If anyone says, isn't the subject of remembrance the main?
याद भी उनको आएगी जो पवित्र रहेंगे.
Only the one who remains pure will remember.
अपवित्र बनेंगे तो याद नहीं ठहर सकते.
If they become impure, Remembrance cannot last.
उनकी बुद्धि में याद टिकेगी जिनकी बुद्धि में ये पक्का है एक बाप शिव बाबा दूसरा न कोई.
Remembrance will remain in the intellects of those in whose intellect it is firm. One father, Shiv Baba and no one else.
उनको अच्छी याद टिकेगी.
They will remember well.
और देहधारियों में देह के वस्तुओं में अगर बुद्धि जाती रहेगी.
If the intellect keeps going into other bodily beings and bodily things,
तो याद टिक नहीं सकती.
The remembrance cannot stay.
क्योंकि विचार ही याद हो जाती है.
It is because that remembrance becomes adulterated.
याद में भी वो प्योरिटी नहीं रहती.
That purity doesn't remain in remembrance either.
अपवित्र बन जाते हैं.
They become impure.
कोई मनोबुद्धि से अपवित्र बनते हैं.
Some become impure with the mind and intellect.
जैसे पत्नी होती है अगर अपने पति के अलावा कोई दूसरे पुरुष को याद करती है.
For example, a wife. If the wife remembers some other man apart from her husband,
तो मन बुद्धि से ही याद करती है ना कभी.
She remembers through the mind and intellect, doesn't she?
तो उसे मन बुद्धि से पतित कहा जाएगा पावन कहा जाएगा.
So, will she be called impure through the mind and intellect और विल शी बी कॉल्ड प्योर?
पति से कहा जाता
है? शी विल बी कॉल्ड इम्प्योर।
अपने पति से प्यार से बातें न करे और दूसरे पुरुषों से प्यार से बातें करती रहे।
इफ शी डजंट टॉक विथ हर हस्बैंड लविंगली बट टॉक्स लविंगली विथ अदर मैन,
तो वाचा के आधार पर उसे पतित कहा जाएगा, पावन कहा जाएगा।
देन विल शी बी कॉल्ड इम्प्योर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीच और विल शी बी कॉल्ड प्योर?
ऐसे ही कर्म इंद्रियों से संसरण अपने पति से न करे औरों के साथ संग करे।
सिमिलरली इफ शी डजंट कीप हर हस्बैंड्स कंपनी थ्रू द ऑर्गन्स बट शी कीप्स अदर्स कंपनी,
तो अपवित्र ही कहा जाएगा ना?
देन शी विल बी कॉल्ड इम्प्योर, वोंट शी?
और याद भी किसकी आएगी?
एंड होम विल शी रिमेम्बर एज वेल?
पति की याद आएगी क्या? नहीं याद आएगी।
विल शी रिमेम्बर द हस्बैंड? नो, शी वोंट रिमेम्बर द हस्बैंड।
ऐसे ही
इन द सेम वे
परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं, कहते हैं मुझे तो सर्व संबंधों से याद करो।
द सुप्रीम सोल फादर कम्स टू दिस वर्ल्ड एंड सेज रिमेम्बर मी इन ऑल द रिलेशनशिप्स,
तब याद स्थायी ठहरेगी।
देन रिमेम्बरेंस विल रिमेन स्टेबल,
सारे ही संबंध मुझे एक बाप से जोड़ो।
जॉइन ऑल द रिलेशनशिप्स विथ मी द वन फादर,
तब याद ठहरेगी।
Then remembrance will remain.
बाप को बुलाते ही हैं कि आओ।
You call the father, come.
पवित्र बनाकर हमको इस छिछी दुनिया से ले जाओ।
Make us pure and take us away from this dirty world.
छिछी दुनिया क्यों कहा गया?
Why is it called a dirty world?
क्योंकि इस दुनिया में चारों ओर व्यभिचार फैला हुआ है।
It is because adulteration is spread all over this world.
अभी बाप कहते हैं घर घर में वैश्याले है।
Now the father says there is a brothel in every house.
तो बाप आते हैं इस छी छी दुनिया से वापस ले जाते हैं पवित्र धाम में।
So the father comes and takes us back from this dirty world to the pure abode.
जो सदा ही पवित्र है, शांति धाम।
विच इज ऑलवेज प्योर, टू द अबोड ऑफ पीस।
और वहाँ से भेज देते हैं सुख धाम में।
एंड फ्रॉम देयर ही सेंड्स अस टू द अबोड ऑफ हैप्पीनेस,
जो सदा सुख का धाम नहीं रहता है।
विच इज नॉट द अबोड ऑफ हैप्पीनेस फॉर एवर,
लेकिन ईश्वरीय है, रचना है।
बट इट इज अ गॉडली क्रिएशन,
इसलिए लंबे समय तक सुख की अनुभूति होती रहती है 21 जन्म तक।
That is why the experience of happiness remains there for a long period of time, for 21 births.
भक्ति मार्ग में तो कोई वापस जा ही नहीं सकते हैं।
In the path of devotion, nobody can go back.
2000 वर्ष की हिस्ट्री है।
There is the history of 2500 years.
भक्ति करते आए।
We have been performing bhakti, that is worship.
कोई भी वापस परम धाम में नहीं गए।
Nobody went back to the supreme abode.
कहते हैं महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया।
They say that Mahatma Buddha went par nirvan, that is went to the nirvana.
शंकराचार्य पार निर्वाण गए।
शंकराचार्य went to nirvan.
लेकिन कहना अलग बात है।
But saying it is a different issue.
और उस बात को साबित करना अलग बात है।
And proving that is a different issue.
अगर एक भी वापस जाए तो अपने साथ दूसरों को भी ले जाएगा ना?
If at least someone goes back, then he would also take the others along with him, wouldn't he?
सब इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्र में आते रहते।
Everyone keeps coming in the cycle of birth and death in this world itself.
क्योंकि जो भी महात्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब भोगता है।
It is because all the great souls, Mahatma, human souls, all of them are pleasure seekers, Bhokta. They take on chariots, rath, and they are selfish, swarthi.
जो भोगी है वो देह के सुख भोगते भोगते नीचे गिरती है आत्मा।
The souls that are pleasure seekers experience the happiness of the body and fall down.
एक ही आत्मा भोगता है।
Only one soul is beyond experience, a bhokta.
जो वापस जाने का रास्ता बता सकती है।
Who can show the way to go back.
क्योंकि वो देह का सुख भोगती नहीं है।
It is because he does not experience the pleasures of the body.
देह में भट प्रवेश करती है।
Although he enters the body.
मुख से ज्ञान सुनाती है।
He narrates knowledge through the mouth.
नेत्रों से दृष्टि भी देती है।
He also gives the drishti through the eyes.
लेकिन वो ever pure आत्मा होने की वजह से।
But because of being the ever pure soul,
वो supreme soul,
that supreme soul,
ऊंचा उठाने के निमित्त बनता है।
Becomes the instrument in uplifting the others.
एक ही ऊंचा उठा के परम धाम ले जाने वाला है, सदगति करने वाला है।
There is only one who uplifts us and takes us to the supreme abode, who brings our true salvation.
और बाकी सब दुर्गति करने वाले।
And all the others bring degradation.
मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता।
A human being cannot bring about the true salvation of another human being.
क्यों नहीं कर सकता?
Why can't he?
क्योंकि मनुष्य अपने ही सदगति नहीं कर सकता।
It is because a human being cannot bring about the true salvation of himself.
अपनी सदगति करे तो पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति हो जाए।
If someone brings about the true salvation of the self, then first of all the true salvation of the soul in the form of mind and intellect would take place.
और जब मन बुद्धि की सदगति होती है,
and when the true salvation of the mind and intellect takes place,
तो मन बुद्धि स्थिरियम हो जाएगी या चलायमान रहेगी।
Will the mind and intellect become stable or will it remain unstable?
स्थिरियम हो जाती।
It becomes stable.
एकाग्र हो जाती।
It becomes concentrated.
मन बुद्धि के एकाग्र होने से,
as a result of the mind and intellect becoming concentrated,
शरीर की इंद्रियां भी एकाग्र हो जाती।
The organs of the body also become concentrated.
उनमें चंचलता नहीं रहती।
Instability doesn't remain in them.
इंद्रिय जीत हो जाता है।
We become victorious over the organs. Indriyajit.
जो इंद्रियजोत तो जीत हो जाता है।
The one who becomes victorious over his organs,
वो विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है।
Can gain victory over the world.
ये पढ़ाई सिवाय सुप्रीम सोल बाप के कोई पढ़ाई नहीं सकता।
Except for one supreme soul father, no one else can give this teaching.
और न कोई विश्व का मालिक बन सकता है।
And no one can become emperor of the world either.
ये राजयोग की पढ़ाई है।
This is the study of the Rajyog.
जिस पढ़ाई से मनुष्य को राजाई की प्राप्ति होती है।
From which human beings obtain the power of sovereignty, राजाई।
और एक जन्म की नहीं।
And not for one birth.
जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त हो सकती है।
They can obtain it for birth after birth.
क्योंकि आत्मा पावरफुल बन जाती है, एकाग्र हो जाती है।
It is because if the soul becomes powerful, if it becomes concentrated,
तो अनेक जन्मों तक उसकी प्रारब्ध चलती है।
The fruit of this lasts for many births.
जैसे बीज सुधार लिया जाता है और जमीन में बोया जाता है.
For example, if the seed is improved and sowed in the soil,
तो दो तीन चार बार भी अच्छी फसल देता है.
It gives good crops even for 2, 3, 4 times.
बाद में विकृत हो जाता है.
Later on, it becomes defective.
आत्मा भी बीज है.
The soul is a seed too.
शरीर वृक्ष है.
The body is a tree.
आत्मा जब एकाग्र हो जाती है राजयोग बल से.
When the soul becomes concentrated through the power of Rajyog,
तो अनेक जन्मों तक निरोगी शरीर प्राप्त करती है.
It receives a body free from diseases for many births.
और प्रकृति के पांच तत्व जन्म जन्मांतर सहयोगी बनकर के रहते.
And the 5 elements of nature remain cooperative for many births.
क्योंकि आत्मा से कनेक्टेड पहले शरीर के पांच तत्व.
It is because the 5 elements of the body are first of all connected with the soul.
शरीर के पांच तत्व सात्विक हो जाते.
The 5 elements of the body become sattvic.
आत्मा की कनेक्शन से.
Through the connection with the soul.
और जो भी आत्माएं हैं पशु पक्षी कीड़े मकोड़े.
All the rest of the souls, animals, birds, insects and spiders,
वो सब मनुष्य के सानिध्य में भी आते हैं.
Come in the human vicinity, sanidhya too.
वो भी पवित्र बनते हैं.
They too become pure.
क्योंकि मनुष्य मन बुद्धिशाली प्राणी है.
It is because a human being is a creature having a mind and intellect.
पशु पक्षियों में उतनी बुद्धि नहीं होती है.
The animals and birds do not have that intellect.
इसलिए वो वायुमंडल को कंट्रोल नहीं कर सकते.
That is why they cannot control the environment.
मनुष्य कंट्रोल कर सकता है.
A human being can control it.
इसलिए सारी सृष्टि ही बदल सकता है.
That is why he can change the whole world.
इस पाप की दुनिया से पतित दुनिया से वापस पावन दुनिया में ले जाने की ताकत सिवाय परमपिता परमात्मा की और किसी में नहीं.
Nobody except for the Supreme Father, Supreme Soul has the power to take us away from this sinful world, from this impure world to the pure world.
सब शास्त्रों में गपोड़े भरे हुए.
All the scriptures are full of rumors.
क्योंकि मनुष्यों के बनाए हुए हैं.
Because they are created by the human beings.
और ये मनुष्यों के द्वारा शास्त्र लिखना करना सुनाना सुनाना ये भी ड्रामा में नूद है.
And the writing of the scriptures by the human beings, the act of listening and narrating them are also fixed in the drama.
फिर भी यही गपोड़े बनाएंगे.
They will create these very rumors again.
सत्युग त्रेता पास होगा.
When the golden and silver ages pass,
द्वापर युग से वो द्वैतवादी युग फिर शुरू होगा.
Then that age of duality will start once again from the copper age.
तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना.
Every head has its own opinion.
हर मनुष्य अपनी अकल चलाएगा.
Each and every human being will use his head.
और अपने अपने शास्त्र बैठ लिखेंगे.
And write his own scriptures.
सत्युग त्रेता में पूजा की कोई चीज नहीं होती.
There isn't any object of worship in the golden and silver ages.
वहाँ कोई शास्त्र आदि नहीं होंगे.
There will not be any scriptures there.
क्यों नहीं होंगे?
Why won't there be any?
शास्त्र माना शासन करने का विधान.
Scripture means the law to rule.
वहाँ कोई अनुशासनहीन होता ही नहीं.
There no one is lawless.
कहाँ?
Where?
सत्युग त्रेता में.
In the golden and silver age.
वहाँ सब अनुशासनबद्ध रहते हैं।
Over there, everyone is under control.
देवताएं उनको शासन में रखने की दरकार नहीं।
There is no need to keep the deities under control.
वो स्वशासित हैं।
They are self-disciplined.
हर आत्मा स्वतः ही अनुशासनशील है।
Every soul is naturally disciplined.
जब अनुशासन बिगड़ता है,
When the discipline breaks,
तो आत्मा चंचल बन जाती है। देह का सुख भोगते भोगते।
The soul becomes unstable as the result of experiencing the happiness of the body.
नीचे गिर जाती है।
It falls down.
तब द्वैतवादी युग शुरू होता है, द्वापर युग।
Then the dualistic age, the copper age starts.
दूसरे दूसरे धर्म और धर्म पिताएं वो आकर के अपनी अपनी मत मतांतर फैलाते।
Different religions and different religious fathers come and spread the variety of their opinions.
और द्वैत फैल जाता है।
So duality spreads.
एक मत खलास।
One system of opinions becomes destroyed.
और अनेक मतों की शुरुआत हो जाती है।
And various systems of opinions start.
तो सतयुग त्रेता में पूजा की कोई चीज नहीं होती।
So there isn't any object of worship in the golden and silver ages.
और द्वापर कलयुग में पूजा और भक्ति चलती रहती।
And what about in the copper and iron ages? Worshipping and devotion go on continuously.
अभी तो इस दुनिया में पूजा का कितना ढेर सामान है।
Now there are lots of objects of worship in this world.
तो भक्ति शुरू ही तब होती है जब अनेक मतें शुरू होती हैं।
So the devotion starts when various systems of opinions start.
राम की है एक मत।
Ram has one system of opinion.
इसलिए रामलीला में राम को एक सिर दिखाया जाता है।
That is why in the Ram Leela, Ram is shown with one head.
और रावण की है अनेक मत।
And Ravan has various systems of opinions.
इसलिए रावण को अनेक सिर दिखाए जाते हैं।
Therefore, Ravan is shown with many heads.
ये अनेक मतों का द्वैतवादी राज्य जब से शुरू होता है, द्वापर युग जिसे कहा जाता है।
When the dualistic kingdom of various systems of opinions, the one called the Copper Age begins,
उस राज्य को कहा जाता है रावण राज्य।
That kingdom is called the kingdom of Ravan.
अनेक देश।
Many countries.
अनेक राज्य।
Many states.
अनेक राजा।
Many kings.
और उनके अलग अलग संविधान।
And their various constitutions emerge.
शास्त्र भी ऐसे ही बन जाते हैं ढेर के ढेर।
The scriptures also become like this. Lots of them are made.
तो देखो बाप आकर के कितनी पॉइंट्स देते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट समझाने के लिए।
So, see, the father comes and gives lots of points to explain the contrast between the new world and the old world.
नई दुनिया सतयुग त्रेता स्वर्ग।
The new world, the golden and silver ages is heaven.
पुरानी दुनिया द्वापर कलयुग नरक।
The old world, the copper and iron ages is hell.
स्वर्ग बनता है स्वस्थिति से।
Heaven is established through the stage of the self.
स्वस्थिति जिनकी स्थिरियम बुद्धि हो जाती है उनको देवता कहा जाता है।
The ones whose intellects become stable in the stage of the self are called deity.
और देह के सुख भोगते भोगते देवताएं जब कम कला वाले बन जाते हैं।
And when the deities become the ones who have less celestial degrees while experiencing the happiness of the body,
आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है।
When the soul power decreases,
तो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के कब्जा कर लेते इस दुनिया में.
The other religious fathers come and take them under control in this world.
वो राजा कमजोर होता है तभी तो दूसरा राजा आकर के आक्रमण करता है.
A king is weak. That is why another king comes and attacks.
तो देवताएं हैं सुख भोगने के आदि.
So the deities are used to experiencing happiness.
सुख भोगते भोगते नीचे गिरते हैं तो दूसरे धर्म पिताएं आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं.
When as a result of experiencing happiness they fall down, other religious fathers come and establish their religions.
एक के बाद एक धर्म पिताएं आते जाते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करते जाते हैं.
The religious fathers come one by one and establish their religions.
पुराने पद का विनाश तो कोई नहीं करता.
No one destroys the oldness.
पुरानी परंपराओं का पुराने रीति रस्म रिवाजों का कोई विनाश नहीं करता.
No one destroys the old customs and old traditions.
सिर्फ अपने धर्म की धारणाएं पढ़ाई पढ़ा करके चली जाती.
They only teach the traditions, धारणाएं of their religion and go away.
तो जब पुराना पद खलास नहीं हुआ.
If the oldness wasn't finished.
और नई बात और ऐड कर दी गई.
And new things were added.
तो ऐसे ही हाल हो जाता है जैसे विष के घड़े में दूध के ऊपर दूध उड़ेलते चले जाओ कई घड़े डाल दो.
It is like in the case of pouring milk into a pot of poison.
Pour many pots.
तो घड़े में क्या रह जाएगा.
What will remain in that pot?
विष ही रह जाएगा.
Nothing but poison.
अमृत तो बन नहीं सकता.
It cannot become nectar.
तो उन धर्म पिताओं ने आकर के पुराने पद को खलास नहीं किया.
Those religious fathers did not destroy the oldness when they came.
पुरानी दुनिया खलास नहीं की.
They did not destroy the old world.
और भगवान बाप आकर के पुरानी दुनिया भी खलास कर देती है.
And God the Father comes and destroys the old world as well.
इस सृष्टि से सारा पुरानापन निकाल देते हैं.
He removes all the oldness from this world.
और जो नए सनातन धर्म की नई शिक्षाएं हैं नया ज्ञान है वो मनुष्य शक्ति में आरोपण करते हैं.
And he inculcates the new teachings, the new knowledge of the new ancient deity religion in the human world.
जिसे सब मनुष्य आत्माएं ग्रहण नहीं करती.
Not every human soul assimilates it.
वो ही पहले पहले ग्रहण करती है जो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती.
Those who never convert into another religions assimilate them first of all.
भारतवासी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं.
Only the residents of Bharat, Bharatvasis have converted into different religions.
दूसरे धर्म वाले कभी हिंदू नहीं बने.
The followers of the other religions have never become Hindu.
अभी लास्ट में आर्य समाजियों की बात छोड़ दें.
Leave the topic of the Arya Samaji of this time at the end.
जिन्होंने सब धर्म वालों को आह्वान कर लिया कि कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है.
They have invited the followers of all the religions, saying that anyone can come and become a Hindu.
लेकिन ऐसे हिंदू बनने वाले मिक्स बनकर के रहेंगे या पवित्र भारतीय बनेंगे.
But the ones who become Hindus in this way, will they remain mixed or will they become pure residents of Bharat?
मिक्स हो जाएगा.
They will become mixed.
विविचार पनप जाएगा.
Adulteration will flourish.
इसलिए बाप कहते हैं कि मैं आकर के सारा पुरानापन खराब कर देता हूँ.
That is why the father says, I come and destroy all the oldness.
इन आँखों से जो भी देखते हो,
Whatever you see through these eyes,
इस सृष्टि में सब कुछ पुराना है.
Everything is old in this world.
सब खलास हो जाएगा.
And everything will be destroyed.
और मैं जो तुम्हें तीसरा नेत्र देता हूँ, ज्ञान का नेत्र देता हूँ, जिसे बुद्धि का नेत्र कहा जाता है, उससे तुम जो कुछ देखते हो.
And whatever you see through the third eye that I give you, through the eye of knowledge that I give you, also called the eye of the intellect.
नई दुनिया देखते हो, आने वाला स्वर्ग की दुनिया देखते हो, वो ही बचेगा.
You see the new world. You see the coming world of paradise. Only this will be saved.
तो मैं आकर के तीन कार्य करता हूँ, कराता हूँ.
So I come and enable three tasks.
ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, नई संगठन की.
The establishment of the new world, of the new gathering through Brahma.
शंकर द्वारा विनाश.
The destruction through Shankar.
जो भी देश देशांतर में अनेक राज्य रूपी संगठन है, अनेक धर्म के संगठन है, उन सब को खलास करा देता.
I bring about the destruction of all the various gatherings in the form of kingdoms, in the various countries, the various religious gatherings.
जैसे गीता में लिखा है धर्म संस्थापनार्थाय.
Just like it is written in the Gita, धर्म संस्थापनार्थाय. For the sake of the establishment of the religion.
धर्म की आकर के स्थापना करता हूँ.
I come and establish the religion, धर्म.
और जितने भी धर्म के नाम पर अधर्मों का वितंडावाद खड़ा होता जाता है, उन सब को खलास कर देता हूँ.
And I destroy the entire irreligious criticism, vitandavad, that arises in the name of religion.
तो मुख्य बात बताते हैं.
So, the main issue mentioned is
मन मनाभाव.
मन मनाभाव.
मेरे में मन लगा. माम एकम याद कुरु.
Merge the mind in me. Remember me alone. मामे कम याद करो.
और दूजम दूजम को अगर याद करता रहेगा,
इफ यू कीप रिमेम्बरिंग द अदर्स,
तो दुर्गति होती रहेगी.
डिग्रेडेशन विल गो ऑन.
मेरे आने का भी कोई फायदा नहीं मिल पाएगा.
यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट ऑफ माई कमिंग.
पावन बनने के लिए बाप को याद करना है.
यू हैव टू रिमेम्बर द फादर टू बिकम प्योर.
ये भूलना नहीं चाहिए.
You should not forget this.
और जितना जास्ती याद करेंगे,
And the more you remember,
उतना जास्ती फायदा होगा.
The more you will benefit.
कम याद करने का पुरुषार्थ करेंगे, तो कम फायदा होगा.
The less you make effort to remember, the less you will benefit.
आप विचारी याद करने की प्रैक्टिस करेंगे,
If you make the practice of unadulterated remembrance,
तो ज्यादा फायदा होगा.
यू विल बेनिफिट मोर.
विचारी याद करने करना नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे.
इफ यू डू नॉट फॉरगेट, इफ यू डोंट गिव अप अडल्टरेटेड रिमेम्बरेंस,
तो फायदे के बदले और ही नुकसान हो जाएगा.
इंस्टेड ऑफ बेनिफिट यू विल लूज मोर.
क्यों?
व्हाई?
क्योंकि अज्ञान काल में तो पाप बनता है एक गुना.
It is because at the time of ignorance, the sins increase in 1:1 ratio.
और अभी तो भगवान बाप आया हुआ है.
Now, God the Father has come.
तुम कहते हो हमें भगवान बाप मिल गया.
You say, we have received God the Father.
संसार को संदेश देते हो ना?
You give the message to the world, don't you?
क्या?
What?
क्या हमें भगवान मिल गया?
That you have received God the Father.
और फिर भगवान की श्रीमत पर न चल करके अपनी मन मत या मनुष्यों के मत के आधार पर चलते हो, तो दुर्गति ही पावेंगे.
एंड इफ यू डोंट फॉलो द श्रीमत ऑफ गॉड, इफ यू फॉलो द ओपिनियंस ऑफ योर माइंड, द ओपिनियंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, देन यू विल अटेन नथिंग बट डिग्रेडेशन.
अपना चार्ट रखना चाहिए.
यू शुड कीप योर चार्ट.
सारा दिन में हमने बाप को कितना याद किया.
हाउ मच डिड यू रिमेम्बर द फादर द होल डे.
नहीं तो पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे.
अदरवाइज यू विल फेल इन द एंड.
बच्चे समझते हैं.
द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड.
हम ही नई दुनिया में पहले पहले सत्व प्रधान थे.
एट द बिगिनिंग वी आवर सेल्व्स वर सत्व प्रधान completely pure in the new world.
कौन बच्चे समझते हैं?
Which children understand?
अमेरिका वासी बच्चे, लंदन वासी बच्चे.
But the children of America or the children of London?
कि भारत वासी बच्चे.
Or do the children of India understand?
जो भारत वासी बच्चे हैं वो समझते हैं.
The children who are the residents of Bharat. भारतवासीज अंडरस्टैंड.
हम ही सत्व प्रधान थे सतयुग में.
दे आवर सेल्व्स वर सत्व प्रधान इन द गोल्डन एज.
अभी अनेक धर्मों के संग के रंग में आते आते हम ही तमो प्रधान बन गए.
नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ वेरियस रिलीजियंस, वी आवर सेल्व्स हैव बिकम तमो प्रधान, दैट इज डोमिनेटेड बाय द क्वालिटी ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस.
देवात्माओं को ही संघ का रंग जाती लगता है.
द डेटी सोल्स देमसेल्व्स आर अफेक्टेड बाय द कलर ऑफ द कंपनी द मोस्ट.
एक राजा का बच्चा हो.
सपोज समवन इज अ सन ऑफ अ किंग.
और वो कुसंग में आ जाए.
एंड ही फॉल्स इनटू बैड कंपनी.
और दूसरे साधारण राज्य अधिकारी हो, उनके बच्चे हो.
एंड सम अदर्स आर द चिल्ड्रन ऑफ एन ऑर्डिनरी रॉयल गवर्नर.
वो भी उसी कुसंग में आ जाए.
दे टू फॉल इनटू द सेम बैड कंपनी.
ज्यादा कौन नीचे गिरेगा.
हु विल फॉल डाउन मोर. समवन सेड द चाइल्ड ऑफ ए किंग.
तो हम हैं ईश्वर के बच्चे.
सो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड.
राजा के बच्चा नहीं, राजाओं का राजा बनाने वाले के बच्चे.
नॉट द चिल्ड्रन ऑफ द किंग बट द चिल्ड्रन ऑफ द वन हु क्रिएट्स द किंग ऑफ द किंग्स.
हम ऊंचे ऊंच बाप के बच्चे हैं.
वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द हाईएस्ट ऑन हाई फादर.
तो हम कुसंग में भी जाते आते.
सो वी ऑल्सो कम इन द बैड कंपनी द मोस्ट.
अभी भारत सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बन गया.
नाउ भारत हैज बिकम द मोस्ट एडल्टरस.
और देशों में इतना करप्शन नहीं है.
देयर इजंट सो मच करप्शन इन द अदर कंट्रीज.
और भारत देश में सबसे जास्ती करप्शन फैला हुआ है.
बट इन द कंट्री ऑफ इंडिया करप्शन इज स्प्रेड द मोस्ट.
दुनिया की कोई भी माननीय गवर्नमेंट नहीं है जो भारत के अंदर से इस भ्रष्टाचार को दूर कर सके.
अ ह्यूमन गवर्नमेंट दैट कुड रिमूव दिस करप्शन फ्रॉम भारत डजंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड.
बाप आकर बताते हैं.
द फादर कम्स एंड सेज
ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण.
दिस करप्शन मीन्स देयर इज एक्टिविटी थ्रू द लवली ऑर्गन्स. भ्रष्ट इंद्रिया.
मैं तुमको श्रेष्ठाचारी देवता बनाता हूँ.
I make you into elevated deities, श्रेष्ठाचारी देवता.
देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करते हैं. श्रेष्ठ इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां.
The deities act through the elevated organs. The elevated organs are the sense organs,
जो मुख के अंदर प्राय रहती.
Which are mostly found in the face.
देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों के आकर्षण से संतान पैदा करते थे.
The deities used to conceive children through the attraction of the elevated organs.
इसलिए बुद्धि की एकाग्रता मस्तक में रहती है.
That is why the intellect is concentrated in the forehead.
आत्मा की ओर, मुख की ओर,
ऑन द सोल इन द फेस।
आज भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले पतित बन पड़े।
नाउ दोज हु एक्ट थ्रू द लोली ऑर्गन्स हैव बिकम इम्प्योर,
क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ जाती रहती है।
इट इज बिकॉज द इंटेलेक्ट कीप्स रनिंग टुवर्ड्स द लोली ऑर्गन्स,
बुद्धि का पतन होता रहता है।
द इंटेलेक्ट अंडरगोज डिग्रेडेशन।
ऋषि मुनि महर्षियों ने, मनुष्य गुरुओं ने बहुत प्रयत्न किया।
सेजेस, ऋषि, वाइज मैन, मुनि, ग्रेट सेजेस एंड ह्यूमन गुरुज मेड ग्रेट एफर्ट,
कि जो शक्ति नीचे छीन हो रही है,
सेइंग दैट द पावर व्हिच इज बीइंग ड्रेन्ड डाउनवर्ड,
चाहे पुरुषों की वीर्य शक्ति और चाहे स्त्रियों की रजो शक्ति,
whether it is the power of virya of males or the power of rajo of the females,
उसको कुंडलनी शक्ति जागृत करके ऊर्ध्वरेता बनाया जाए।
It should be raised upwards, ऊर्ध्वरेता, by stimulating the kundalini power.
लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा मानवीय संगठन नहीं निकल सका।
But no such human gathering could emerge in the world,
जो ऊर्ध्वरेता बना होता।
With those having erased power, the male and female power.
अभी बाप असली बात बता रहे हैं।
Now the father is telling the truth.
कि अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझकर, मुझे ज्योति बिंदु परमात्मा बाप जो साकार तन में आया हुआ है, उसको याद करेंगे।
If you consider yourself to be a soul, a point of light, and remember me, the Supreme Soul Father, point of light, who has come into the physical body,
तो पतित बुद्धि से पावन बुद्धि बन जाएगी।
Your intellect will become a pure one from a degraded one.
और इस तरह का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे।
And if you do intense efforts like this,
तो ये भी हो सकता है कि इसी जन्म में शरीर के पांच तत्वों को भी निरोगी बना लेंगे।
It is possible that in this very birth you will make the five elements of the body free from disease, निरोगी।
क्योंकि जो मूल शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी।
It is because the main power will rise upwards,
मुख की तरफ जाने योगी बन जाएगी।
It will become capable of going towards the face,
फिर शक्ति का क्षरण होना बंद हो जाएगा।
Then the depletion of power will stop,
और जो नई दुनिया का नया संगठन बनेगा उस दुनिया में,
And the new gathering of the new world which will be created in that world,
ऊर्ध्वरेता संगठन, ऊर्ध्वमुखी इंद्रियों के द्वारा संतान को पैदा करने योग्य बनेगा।
The gathering of those with erased power will become capable of conceiving children through the organs directed upwards.
और ये भ्रष्टाचारी सृष्टि तो खलास ही होनी है।
And this adulterated world certainly has to come to an end.
क्योंकि भगवान आते हैं तो उनका मुख्य कार्य तो यही है।
It is because when God comes, this exactly is his main task.
पुराने धर्मों को, पुरानी दुनिया को, पुरानी प्रकृति को, प्रकृति के पांच तत्वों को खलास करना।
To destroy the old religions, the old world, the old nature and the five elements of nature.
और नई दुनिया की स्थापना करना।
And to establish the new world.
Om Shanti.